ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने संगम युग में हम बच्चों को तीन खजाने दिए हैं। एक है ईश्वरीय ज्ञान का खजाना, दूसरा है दैवी गुणों का खजाना और तीसरा है ईश्वरीय शक्तियों का खजाना। और बाबा ये कहती हैं कि इन खजानों से आप इतने अमीर बन गए हो कि सतयुगी देवताओं के जो हीरे मोती जवाहरात हैं वो तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। पिछले दिनों बाबा की एक मुरली आई थी जिसमें बाबा ने कहा था कि गांधी जी भारत को राम राज्य क्यों नहीं बना सके, और फिर बाबा ने उत्तर दिया कि गांधी जी इसलिए राम राज्य नहीं बना सके क्योंकि गांधी जी ने आत्म अभिमानी बनने का पाठ नहीं पढ़ाया। एक पुरानी ज्ञानामृत में एक बहुत सुंदर चित्र है जिसमें दिखाया है कि आत्म अभिमान का बीज बोया गया तो एक अंकुर निकला, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और जो पेड़ बना उसको जो फूल लगे फल लगे वो सब गुणों वाले फल थे। संतुष्टता का फल लगा, प्रेम का फल लगा, पवित्रता का फल लगा, नम्रता का फल लगा। और उसी की बाजू में दूसरा चित्र दिखाया कि देह अभिमान का बीज बोया गया तो उसका भी अंकुर निकला और उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा पेड़ बना। तो वो जो पेड़ बना उसको जो फल लगे वो सब दुर्गुणों के फल लगे, हिंसा, लड़ाई, असंतोष, क्रोध, लोभ, अहंकार। तो उस चित्र में ये बताया गया कि अगर आपको जीवन में सद्गुण चाहिए तो आपको एक बीज बोना पड़ेगा और उस बीज का नाम है आत्म अभिमान। आज की मुरली में बाबा ने कहा 5000 साल में बाबा आते हैं आपको आत्म अभिमानी बनने का पाठ पढ़ाने। ये वाला पाठ और कोई पढ़ा नहीं सकता, तो ये ज्ञान का पहला पाठ है। और इस पाठ को पढ़ने के बाद ही जीवन में सद्गुण आते हैं, जिसके लिए आज बाबा ने कहा कि जो बच्चे गुणवान हैं वो बाप को कशिश करते हैं। माशूक भी उनको याद करेगा जिनमें गुण होंगे। और बाबा ने कहा कि जो गुणवान बच्चे हैं वही सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सेवा का जो सब्जेक्ट है उसका गहरा कनेक्शन हमारे गुणों से है। जैसे फूल जब खिल जाता है तो भंवरे अपने आप आ जाते हैं, कोई निमंत्रण देने नहीं जाता कि अरे भंवरे तुम इधर आओ और मेरा रस चूसो। जैसे ही वो खिलता है अपने आप आ जाते हैं। ऐसे ही जब हम आत्माओं के अंदर गुणों की खुशबू भर जाती है तो अन्य आत्माओं की सेवा हमारे गुणों से ऑटोमेटिक होने लगती है। तो इस संगमयुगी जीवन में आत्म अभिमान रूपी ज्ञान का बीज बोया तो सद्गुणों का फल निकला। और ये सद्गुण कई प्रकार के हैं, लेकिन आप जानते हैं बीज बोने से लेकर के और फल आने तक की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी बड़ी कष्टकारी है। कल बाबा ने कहा था कि आप बच्चों को बहुत सहन भी करना पड़ता है, बहुत बातों का सामना भी करना पड़ता है। तो जब हम आत्म अभिमान रूपी बीज बोते हैं तो क्या होता है? देखो, बीज जमीन में जाता है, छोटा सा बीज, और बिल्कुल अंधकार भरे वातावरण में जाता है। अंधकार ही अंधकार है, अंदर कुछ दिखता नहीं है और न ही बीज के जाने के लिए कोई जगह है। फिर भी बीज जमीन के अंदर जाता है और वो भी औंधे मुंह जाता है, और औंधे मुंह अंदर जाकर के उस अंधेरे में संघर्ष करता है। जब हम भी आत्म अभिमान का बीज बोते हैं तो अंतर्मुखी बनते हैं। शुरू में तो अंदर अंधकार ही अंधकार दिखता है, बाहर के जगत में तो रोशनी है, बाहर के जगत में जगमगाहट है, सुंदरता है, लेकिन भीतर के जगत में जब व्यक्ति अंदर की ओर मुड़ता है तो अंधकार ही अंधकार दिखता है। समझ में नहीं आता है कि मैं अंदर क्या देखूं, किस पर ध्यान लगाऊं, कहां मन को टिकाऊं, अंदर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे वो बीज हिम्मत नहीं हारता, कहीं से थोड़ा सा पानी मिला, उसका मुंह गीला हुआ, मुंह खुल गया, और उसके बाद उसके अंदर जो कुछ भरा हुआ था वो बाहर निकलने लगा, और अंदर ही अंदर वो सीधा भी हो गया, और उसके बाद वो जमीन पे वापस अंकुर बन के फूट आया। तो हम भी जब अंदर जाते हैं और जरा सी अनुभूति होती है कि शरीर के भीतर मैं एक आत्मा हूं, हल्की सी अनुभूति होती है, कोई छोटी सी लाइट की अनुभूति होती है, वो चाहे बुद्धि योग हो चाहे कोई अनुभव हो, तो उससे आत्मा को बल मिलता है कि सचमुच मैं इस शरीर से अलग कोई शक्ति हूं। और अगर मैं इसका बार बार अभ्यास करूं, बार बार अभ्यास करूं, तो मेरी अनुभूति बढ़ सकती है, आत्मा में हिम्मत आती है, और फिर उसमें आत्म भाव का एक छोटा सा अंकुर फूटता है। मैं आत्मा हूं, ये भाव जागृत होता है, और उसके बाद जैसे बीज में अंकुर फूटा, और जैसे ही अंकुर फूटा तो बाहर भी बहुत सारी चेतावनी, बहुत सारी परीक्षाएं हैं। हम भी जब आत्मा बनने का अभ्यास करते हैं, आत्म स्थिति में टिकते हैं, आत्मा का पाठ पढ़ते हैं, तो हमारे सामने भी बहुत चुनौतियां आती। सबसे पहले देह की चुनौती, देह के संबंधों की चुनौती, मित्र संबंधियों की चुनौती, जानकार लोगों की चुनौती, लोकलाज की चुनौती। तो जैसे वो बीज है, अंकुर बना, तो सबसे पहले चिड़िया आती है, इतना कच्चा कोमल उसका तना देख करके उसको चांच मारती है, कच्चे कच्चे को खाने में मजा आता है। जब वो पक करके और काला काला हो जाएगा तना, तब तो कोई चिड़िया नहीं आएगी। पर बाबा कहते हैं जो कच्चे पौधे हैं उनको माया जल्दी खाती है। तो जब हम भी आत्मा के अभ्यास को करते हैं, आत्मा के मार्ग पर चलते हैं, आत्म अभिमान के मार्ग पर, तो हमें भी बहुत लोग समझाने आते हैं, साम दाम दंड भेद, ये चारों तरीके अपनाए जाते हैं। पहले लोग हमको समझाते हैं कि इस मार्ग पे मत जाओ, फिर हमें धमकाते हैं कि अगर तुम चले तो तुमको हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तुमको एक पैसा भी नहीं देंगे, तुमको घर नहीं आने देंगे। फिर कोई कोई कहती हैं कि तुम इस मार्ग पे चलोगे तो आगे जाके बहुत पछताओगे, इस मार्ग पे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि डिग गए, तुम्हारी क्या औकात है। अरे कोई साधना में आज तक सफल भी हुआ, तुम आगे जाके वापस लौटोगे, इससे अच्छा अभी अपने घर लौट जाओ। तो बहुत लोग बहुत तरह के प्रलोभन भी देते हैं कि तुम इस मार्ग को छोड़ दो, हम तुमको बड़ी नौकरी देंगे ऊंची, और भी कई तरह के प्रलोभन देते हैं। तो उस बीज को भी बहुत चुनौतियां आती हैं। पहली चुनौती तो चिड़िया से आई, चोंच मारती रही और वो बेचारा पीड़ा सहन करता रहा। फिर दूसरी चुनौती हवा से आई, हवा ने उसको जोर से हिलाया लेकिन वो पांव रोप के खड़ा रहा, हवा इधर आई तो इधर झूल गया, इधर आई तो इधर झूल गया। तो जो आत्मा के मार्ग पे चलता है, अध्यात्म के मार्ग पे चलता है, उसको लोग इधर झुलाते हैं तो बेचारा झूल जाता है, कहता है हाँ ठीक है, फिर इधर झुलाते हैं तो भी कहता है हाँ ठीक है, लचीला हो जाता है, दुनिया की हाँ में हाँ ऊपर से मिलाता है ताकि संघर्ष ना करना पड़े। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक 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 हाँ 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 करते हुए आगे बढ़ता जाता है। क्रोध उनकी बातों को काटता नहीं है, उसी में भलाई है। बातें काटेगा, संघर्ष होगा, विवाद होगा, बहस होगी, समय खराब जाएगा। तो जैसे वो पौधा लचीला होके हवा का सामना करता है, ऐसे ही आत्म अभिमान के मार्ग पर चलने वाला भी लचीला हो जाता है। इधर भी ठीक उधर भी ठीक, सब कुछ ठीक। उसके बाद सूर्य आता है, सूर्य कहता है तुम ऊपर बढ़ रहे हो, मेरी जितनी ऊंचाई करना चाहते हो क्या, मुझे छूना चाहते हो क्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं ऐसी आग बरसाऊंगा तुम झुलस जाओगे। तो सूर्य भी अपनी पूरी आग बरसाता है, लेकिन उस आग को भी वो सहन करता है नन्हा सा पौधा। अब एक आत्म अभिमान के मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है उसके ऊपर भी आग बहुत बरसती है। कई लोग क्रोधी बन के सामने आते हैं, कई विकारी उसके सामने आते हैं, कई उसके सामने परीक्षा और परिस्थिति बन करके आते हैं। कोई ऑफिसर धमकी देता है तुम ऐसे करोगे तो हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे, कोई शिकायत करता है, कोई टांग खींचता है, कोई फाइल छिपा देता है, बहुत कुछ होता है। स्टूडेंट पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी होता है, कोई उनके नोट्स छिपा देता है ताकि ये पढ़ाई में आगे ना जाए, बहुत बातें होती हैं। एक बार एक बाबा के बच्चे के नोट्स छिपाए किसी ने, और अभी परीक्षा के 7 दिन बाकी थे। बाबा का बहुत अच्छा बच्चा था, रोज मेडिटेशन करता था, स्कूल में तो कोई मेडिटेशन करने वाला था नहीं, तो सब परीक्षा ले रहे थे उसकी। उसने घर आके अपनी मम्मी को बताया कि 7 दिन बाकी हैं और किसी ने मेरे नोट्स चोरी कर लिए, अब मैं क्या करूं। तो मम्मी कहती है कोई बात नहीं बेटा, वो भी ज्ञान में थी, किताबें बाजार में खत्म थोड़ी हो गई हैं, मैं किताबें लाके देती हूँ, तुम आज ही बैठ के सारे नोट्स बनाओ दोबारा, अभी तो 7 दिन है, 7 दिन तो बहुत होते हैं। बच्चे ने दोबारा नोट्स बनाए और जब निकलने लगा पेपर देने तो उसको फिर मन में आया कि पता नहीं लोगों का आजकल पेपर भी चेंज कर लेते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे के पेपर पे दूसरे का रोल नंबर लिख देते हैं और कमजोर बच्चे के पेपर पे दूसरे का रोल नंबर लिख देते हैं, ऐसा भी होता है। मेडिकल का स्टूडेंट था वो, तो बाबा के कमरे में गया, बाबा मेरे नोट्स चोरी हो गए थे वो तो मैंने बना लिए, लेकिन अब मेरे को लगता है कि कोई मिनिस्टर का बेटा होगा और कहीं मेरा पर्चा ना चोरी हो जाए। तो जब बाबा के कमरे में बैठा तो बाबा की दोनों बाहें फैल करके और उसके चारों ओर आ गई, और बाबा ने महसूस कराया कि बच्चे तुम मेरी छत्र छाया में सुरक्षित हो, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। बच्चे ने पेपर दिए और फिर बच्चे ने टॉप किया अपना कॉलेज। तो जैसे आगे बढ़ते हैं उस पौधे के सामने भी परीक्षा आती है, और जब हम आत्म अभिमान का बीज बोते हैं तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ता है उसमें भी परीक्षाएं आती हैं। उसके बाद सूर्य ने परीक्षा ली, फिर आगे क्या हुआ, आगे जो झाड़ झंखाड़ के पौधे होते हैं, खरपतवार होती है, घास होती है, वो क्या करती है, एक तो लंबी फैल करके उसके ऊपर उसको ढक लेती है, और दूसरा उसके हिस्से का खाद और पानी भी खा जाती है। तो यहां भी ऐसे ही होता है, जब कोई ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ता है ना, तो लोग सोचते हैं अब ये तो सन्यासी बन गया, इसका हिस्सा हम दबा लेते हैं, अब ये तो सन्यासी बन गया, इसका हिस्सा हमें मिल जाएगा। कोई उसकी जमीन को ललचाई नजर से देखता है, कोई उसके धन को ललचाई नजर से देखता है, कोई उसके हक को ललचाई नजर से देखता है। लेकिन कहते हैं जैसे बगीचे में फूल का रक्षक माली होता है, इसी तरह से इस दुनिया में भी जो फूल बनना चाहता है उसकी रक्षा भगवान करता है। तो वहां जब माली देखता है कि एक पौधा ऊपर आ रहा है और झाड़ झंखाड़ उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो माली आगे बढ़ता है और खरपतवार को काट देता है। और इसी तरह से जब बाबा देखता है कि मेरे एक सच्चे बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बना के उसकी भी रक्षा करता है। फिर धीरे धीरे ये फूल का पौधा आगे बढ़ता है और इस पर एक कली फूटती है और वो कली धीरे धीरे फूल बन जाती है। फिर दूसरी डाली पे कली फूटती है, तीसरी डाली पे कली फूटती है और ये पूरा पौधा फूलों से भर जाता है। अब देखो क्या होगा, कहीं से तितली आएगी, कहीं से भंवरा आएगा, मधुमक्खी आएगी और उस फूलों पे सब बैठेंगे। निमंत्रण नहीं दिया फूल ने कि तितली तुम आओ देखो मैं खिल गया, भंवरे तुम आओ, मक्खी तुम आओ, अपने आप आ गए। और यहाँ क्या होता है, जब व्यक्ति लंबे समय तक आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करता है तो उसके जीवन में भी दिव्य गुणों के फूल खिलने लगते हैं, क्योंकि दिव्य गुणों के फूलों का जो आधार है वो आत्म अभिमानी स्थिति है। जितना जितना आप आत्म अभिमानी स्थिति में टिकेंगे, जीवन में नम्रता आएगी, सत्यता आएगी, पवित्रता आएगी, हर्षित मुक्ता आएगी, कर्मठता आएगी, अथकपन आएगा, संतुष्टता आएगी। और जब जीवन में ये गुण आएंगे तो जैसे वो पौधा माली को कितना प्यारा लगता है, माली बगीचे में प्रवेश करता है और फूलों से लदे हुए पौधे को देख के उसे कितना नशा चढ़ता है, मेरा ये फूलों वाला पौधा कितना सुंदर है। और आज बाबा ने कहा कि जो गुणवान बच्चे हैं वो भी बाप को कशिश करते हैं, माशूक को वही अच्छे लगते हैं जिन आशुकों में बहुत सद्गुण है। तो जब हमारे अपने जीवन में भी नम्रता, सत्यता, पवित्रता हर परिस्थिति में बाबा देखता है तो बाबा को ऐसे बच्चे कशिश करते हैं, ये बच्चा कितना प्यारा है, कितनी भी बातें आई लेकिन इस बच्चे के गुण कभी धूमिल नहीं होते, कितना भी सहन करना पड़े फिर भी बच्चे के चेहरे पे शिकन नहीं आती, भूख प्यास गर्मी सर्दी साधनों का अभाव लोगों के विरोध, ये बच्चा सब कुछ सहन कर लेता है। तो ये मेरा बहुत प्रिय बच्चा है। बाबा ने कहा ऐसे तो मेरी नजर सब पे जाती है लेकिन खास जो बच्चे सेवा में है, खास जिन बच्चों में बहुत गुण है उनके ऊपर तो बाबा की जैसे नजर टिक जाती है, जैसे बाबा उन बच्चों की तो माला फिराते हैं, जैसे उन बच्चों को तो रात दिन याद करते हैं। तो वे बच्चे कौन से हैं, वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने इस जीवन रूपी पेड़ पर दिव्य गुणों के फूल खिलाए हैं। और फूल भी ऐसे खिलाए हैं कि बेशक आंधी आए तो भी नहीं गिरते, तूफान आए, परीक्षाएं आए तो भी नहीं गिरते, हर परिस्थिति में उनके सद्गुण बने रहते हैं। ऐसे बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं और ऐसे बच्चे ही सेवा में सफल होते हैं, क्योंकि जब हम सेवा के क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत बातें आती, तो अगर उन बातों को देख देख करके व्यक्ति मुरझा जाए तो वो सेवा क्या करेगा। لیکن باتیں آئی اور گئی، لیکن ہمارا جو سدگن ہے، ہمارا جو گن روپی پھول ہے، وہ کھلا رہا، خوشبو دیتا رہا، تب تو لوگ ہم سے پربھاوت ہوں گے۔ اس لیے بابا نے کہا، بابا کو وہ بچے پیارے لگتے ہیں جن میں سدگن ہے۔ تو سدگن تو بہت ہے، شکتیاں بھی بہت، اور یہ دیویہ گن ہی ہمارا شنگار ہے۔ اور جتنا جتنا ہم آتمک درشٹی کو پکا کرتے ہیں، اتنا اتنا یہ دیویہ گن بڑھتے جاتے ہیں، اور بڑھ کر کے ایک دن پراکاشٹھا پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ جب ہم کسی بھی ویکتی کو سامنے دیکھتے ہیں تو دکھتا تو اس کا شریر ہے، آنکھ سے تو شریر دکھے گا نا، 63 جنموں کا ہمارا ابھیاس ہے، ہم کو دکھے گا کہ بھئی یہ جوان ہے کہ بوڑھا ہے، میل ہے کہ فیمیل ہے، بھارت کا ہے کہ ودیش کا ہے، جھٹ ہماری نظر اس چیز کو پہچان لیتی ہے۔ لیکن بابا نے بھی کہا، اس دن مرلی میں بابا کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کو سکاش دینا ہے تو بھی پہلے شریر تو دکھے گا، اور شریر دکھنے کے بعد ہم آتما کو یاد کر کے اس کو سکاش دیتے ہیں۔ تو پہلی نظر میں تو ہماری نظر شریر پہ جاتی ہے، لیکن اندر میں آتما کو گیان ہے کہ شریر کو چلانے والی آتما ہے، اور ہمارا دھیان پھر آتما پر کیندرت ہوتا ہے۔ جیسے آپ دنیا میں دیکھیے، ایک سائنٹسٹ ہے، اس سائنٹسٹ کو کسی ایک پدارتھ پہ شودھ کرنا ہے۔ جیسے مان لیجئے وہ سونے کے اوپر شودھ کر رہا ہے، تو جب وہ کہیں بھی آتا جاتا ہے تو پدارتھ تو اسے بہت سارے دکھیں گے، لیکن اس کے من میں چنتن کیا چل رہا ہوتا ہے، سونا، سونے کی مول پراپرٹی کیا ہے، سونے میں ہم کیا ملا دیں تو اس کی جو اس کا گن ہے اس میں کیا پریورتن آتا ہے، کتنی پرسنٹیج میں ملائیں تو چمک میں کتنا پریورتن آتا ہے، مطلب اندر میں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس کا جو چنتن ہے، اس کا جو من ہے، وہ سونے پر ایکاگر ہے۔ تو انیک دیکھتے ہوئے بھی ایک پر ایکاگر ہے ایک سائنٹسٹ۔ آپ ایک اوشدھی وگیانی کو دیکھیے، مان لیجئے وہ کہیں ون میں چلا جائے، ہزاروں پیڑ پودے اسے دکھائی دیں گے، لیکن اس کا دھیان کہاں ایکاگر ہوگا، وہ والی جڑی بوٹی کہاں ہے جس سے مجھے اوشدھی بنانی ہے، دیکھتا جائے گا دیکھتا جائے گا۔ اس کا کام جس جڑی بوٹی سے ہوگا وہاں جا کے وہ رکے گا، اس کو دیکھے گا یا اس کو لے گا۔ تو جنگل کے اتنے پیڑ پودے اسے دیکھتے ہوئے بھی نہیں دکھتے، کیونکہ اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، اس کا لینا دینا تو اس جڑی بوٹی سے۔ آپ ایک اسٹوڈینٹ کو دیکھیے، اس کے پاس 10-12 کتابیں، دنیا میں کروڑوں کتابیں لائبریری بھری ہیں، واچنالے بھرے ہیں، لیکن بچے کو کروڑوں کتابوں سے کچھ نہیں لینا۔ اس کا جو من، اس کی جو کنسنٹریشن ہے، اس کی جو 8-10 کتابیں ہیں ان پہ، ان کو پتا ہے کہ میں ان کو پڑھوں گا تو میرے نمبر اچھے آئیں گے۔ ایک گرہنی ہے، بازار میں جاتی ہے، ہزاروں دکانیں، لیکن اس کا دھیان ان دکانوں میں نہیں جاتا۔ اس کو اپنے گھر کے لیے کچھ سامان خریدنا ہے تو وہ کیول اپنے من کو اس دکان پہ اور دکان میں بھی اس سامان پر ایکاگر رکھتی ہے، باقی چیزوں کو نہ دیکھتی ہے، نہ ان کا چنتن کرتی ہے، نہ ان کے آکرشن میں آتی ہے اور آ جاتی۔ تو ایسے ہی ہم نے سامنے ویکتی کو دیکھا، ویکتی تو 5 فٹ کا ہے، 6 فٹ کا ہے، ویکتی تو بے شک شریر کا وزن بھی 70 کلو 80 کلو ہے، آنکھ ناک کان منہ ہاتھ بہت سارے آرگنس، لیکن میرا کام کس سے ہے، مجھے بات کس سے کرنی ہے، مجھے سکاش کس کو دینی ہے، مجھے شبھ بھاونا کس کے لیے رکھنی ہے، آنکھ کے لیے، ناک کے لیے، کان کے لیے، مکھ کے لیے، نہیں۔ تو جیسے وہ لوگ اپنے وشے پر ایکاگر ہیں، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنے وشے پر اتنے ایکاگر ہیں کہ باقی ایکسٹرا کچھ بھی نہیں چنتن کرتے، तो ऐसी ही हमको बाबा ने बार बार बताया है कि सुनती भी आत्माएं, देखती भी आत्माएं, बोलती भी आत्माएं, चिंतन भी आत्मा करती है, और आप जो कुछ दोगे उसको कैच भी आत्मा करती है। तो हमारा कारोबार किससे है? आत्मा से। शरीर से तुम्हारा कोई कारोबार नहीं, दूसरे व्यक्ति के शरीर को उसकी आत्मा पाल रही है। मुझे तो उसके शरीर की पालना करनी नहीं, मुझे जो कारोबार करना है इस आत्मा के तीनों कालों को देखना है, इस आत्मा के स्वरूप को देखना है, तो मेरा तो सारा कारोबार आत्मा से ही है ना। तो इसलिए इतने बड़े शरीर को देखते हुए भी मेरा जिससे काम है मुझे उस आत्मा पे कंसंट्रेट करना है। और बाबा ये भी कहती हैं कि जब आप शरीर को देख के बात करते हो ना तो वो बात आत्मा तक पहुंचती ही नहीं, अर्थात आप शरीर को देख के किसी को ज्ञान सुनाते हो तो बाबा ने कहा तीर लगता ही नहीं है, क्योंकि जिसको तीर लगाना था उसको तो आप देख ही नहीं रहे थे। तो अगर हमको अपने कारोबार में सफलता पानी भी है, किसी व्यक्ति से कोई काम निकालना है हमको, तो भी आप आत्मा देख के बात करोगे ना तो वो झट आपके अनुकूल हो जाएगा। दो दिन पहले भी बाबा ने कहा ज्ञान सुनाओ फिर दृष्टि दो, तो अगर आप किसी से हॉल लेने जाएंगे ना तो वो हॉल दे देगा। बातचीत तो करी पर आत्मा को दृष्टि नहीं दी, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके बातचीत से प्रभावित हो जाए। लेकिन अगर आपने आत्मा को दृष्टि दी तो अवश्य ही वो आपके वाइब्रेशन कैच करेगा और आपका उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो चलते फिरते हम अपने आप से सवाल पूछें कि मेरा कारोबार किससे है और मैं जो कारोबार करने वाली हूं वो कौन। हाथ थोड़े कारोबार करते, जिनके हाथ नहीं वो भी कारोबार कर लेते हैं। पांव थोड़े कारोबार करते हैं, जिनको पांव नहीं वो भी कारोबार कर लेते हैं। तो इधर कारोबार करने वाली है आत्मा और सामने जिसके साथ मुझे कारोबार करना है वो भी आत्मा है। तो इतना बड़ा शरीर देखते हुए भी हम अपने मन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। मेरा लक्ष्य है आत्मा को देखना, आत्मिक दृष्टि डेवलप करना, स्वयं को आत्मा समझना। तो ये हम बार बार अभ्यास करें तो ये काम बहुत सरल हो जाएगा। आज बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाप की आज्ञा को तुरंत मानते हैं वो हैं आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार। तो बाबा की ये पहली आज्ञा है। अगर हम कहते हैं नहीं बाबा हमारा तो ध्यान देह में चला जाता है, क्या करें हमको तो देह दिख जाती है, फिर देह का चिंतन भी चलता है बाबा, तो इसका मतलब हम आज्ञाकारी भी नहीं हुए, फरमान बरदार भी नहीं हुए। या फिर कई बार हम कहते हैं कि बाबा अमुक से मेरा हिसाब किताब है, बाबा कहते हैं बच्चे उसको आत्मिक भाव से देखोगे ना तो हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, लेकिन हिसाब किताब लंबा चल रहा है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कई बच्चे मैथ्स में बड़े होशियार होते हैं, मैथ्स की कोई सम आती है ना तो उसको 5 मिनट में हल कर लेते हैं, और कई बच्चे कमजोर होते हैं, 1 दिन लगा देते हैं, 2 दिन लगा देते हैं। तो बाबा ने कहा हिसाब किताब चुकतू करने में जो बच्चे होशियार होंगे वो 5 मिनट में भी खत्म कर देंगे, और नहीं तो कई उसको लटकाए रखेंगे वो 15 साल भी चलता रहेगा। तो जितनी हम आत्मिक दृष्टि डेवलप करेंगे हिसाब किताब का खाता जल्दी क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो वो 15 साल भी लटकता रहेगा, क्या करूं वो मुझे ऐसे बोलता है, क्या करूं वो मेरे साथ ऐसे करता है, क्या करूं सामने वाले से मेरी बनती नहीं, बाजू वाले से मेरी बनती नहीं। जब आप आत्मिक भाव सबके लिए डेवलप करेंगे सबसे बननी चालू हो जाएगी और सबसे जो पुराना खाता था वो चुकतू हो जाएगा। तो आत्मिक भाव जितना अधिक होगा उतने हमारे रिश्तों में नातों में शुद्धि आएगी, प्रेम बढ़ेगा, शुभ भावना बढ़ेगी। फिर बाबा कहते हैं आपका ये जो दिव्य गुण है ये एक एक दिव्य गुण हीरे मोती से भी अमूल्य है। सतयुग में जो हीरे मोती होंगे वो तो विनाशी हैं, लेकिन जो सद्गुण है वास्तव में वो एक चैतन्य आत्मा की शक्ति है और वो लोगों के काम आती है। दिखाते हैं कि एक बार एक राजा था, तो उसके यहाँ एक सन्यासी आया, तो राजा सन्यासी को महल घुमाने लगा। घूमते घूमते जहां पे राजा का खजाना था, और खजाने में बहुत हीरे मोती जवाहरात बहुत कुछ था, तो वहां ले गया और कहता है देखो ये मेरी दौलत है। तो सन्यासी के चेहरे पे कोई भाव ही नहीं आया, नहीं तो दौलत को देख के आदमी कहता अच्छा इतना धन इतने हीरे इतने जवाहरात, सन्यासी तो चुपचाप खड़ा रहा। तो राजा को लगा कि ये तो प्रभावित नहीं हो रहा, थोड़ा और अंदर ले गया, वो पूरा ही जगमगा रहा था। बोला ये उनसे भी ज्यादा कीमती हीरे हैं, इनके आप रोशनी देख रहे हो पूरी कितनी फैली हुई है। सन्यासी के चेहरे पे फिर भी कोई भाव नहीं आया, वो तो अपने उसी न्यूट्रल भाव में था। फिर तीसरे अंदर वाले तहखाने में ले गया, तो वहां केवल दो ही हीरे रखे थे और उन्होंने पूरे तहखाने को प्रकाशित कर रखा था। राजा ने सोचा अब तो ये जरूर कहेगा कि इतना अमूल्य हीरा, सन्यासी ने कुछ नहीं बोला। फिर राजा उसको बाहर ले आया तो सन्यासी पूछता है कि इनसे तुमको कुछ आमदनी भी होती है क्या? तो राजा को हंसी आ गई, कहता है सन्यासी जी आप रहे भोले के भोले, इनसे आमदनी क्या होगी? इनकी देखरेख के लिए तो पैसा खर्च करना पड़ता है, आप देख रहे हो ये जो इतने पहरेदार बैठे हुए हैं, ये इनकी संभाल के लिए बैठे हैं और इनको हर महीने कितनी मोटी तनख्वाह देनी पड़ती। तो सन्यासी कहता है फिर तो इससे ज्यादा अमूल्य पत्थर मेरे पास। तो राजा ने कहा इससे अमूल्य और वो भी आपके पास? बोला हाँ, उसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता और देखरेख के लिए संभाल के लिए कोई नौकर चाकर नहीं रखने पड़ते। तो राजा ने कहा चलो मुझे दिखाओ। तो वो एक गरीब घर में ले गया जहाँ एक बुढ़िया थी और घर में कुछ नहीं दिख रहा था, झोपड़ी थी वो। तो राजा ने सोचा झोपड़ी में इतना अमूल्य पत्थर कैसे हो सकता है। थोड़ा अंदर जाकर के उसने एक चक्की दिखाई सन्यासी ने, बोला ये चक्की आपके हीरे से ज्यादा अमूल्य है। कैसे? बोला नंबर एक, ये बुढ़िया इस चक्की पे पीसती है, इसका पसीना निकलता है, ये स्वस्थ रहती है। 80 साल की हो गई है लेकिन अभी तक इसको कोई बीमारी नहीं है। नंबर दो, इसकी रखवाली नहीं करनी पड़ती, चक्की की खुली रखी है, ना कोई पहरेदार ना कोई नौकर, चोरी का भय नहीं, तो ये ज्यादा अमूल्य है। स्वास्थ्य भी दे, कमाई भी करवाए और इसको रख करके कोई चिंता भी नहीं, और आप वाले हीरे तो छिपे रहते हैं, ना तो उनकी कोई रौनक देख सकता, अंदर ही अंदर घुटे रहते हैं, और फिर उनके बाहर भी कई पहरेदार बैठे हैं और फिर उनके लिए खर्चा भी इतना होता है। तो राजा को समझ में आया सचमुच जिन हीरों पे मैं घमंड करता हूं वो देते तो कुछ भी नहीं है दुनिया को, शोभा भी नहीं दे पाते क्योंकि उनको छिपा के रखना पड़ता है। सतयुग के जो हीरे हैं कम से कम वो महलों की शोभा तो बनेंगे। आज की दुनिया में अगर किसी के पास ऐसी कोई अमूल्य चीज हो तो वो तो शोभा भी नहीं बन पाती, क्योंकि शोभा बने बाहर निकालें तो लूट ली जाए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये तो जड़ है, जो दुनिया के हीरे मोती या जो दुनिया का गहना सोना वो जड़ है, उसमें कोई सुख नहीं है। जिनके पास ये हैं वो बहुत दुखी हैं। लेकिन आप बच्चों को बाबा ने ऐसे गहने दिए हैं जिन्हें आप पहन करके सुखी हो, दूसरों को पहना करके भी सुखी हो, और जो दिन दिन बढ़ते जाते हैं, और उनके कारण आप इतने सुंदर हो गए हो, जो लोग पूछते हैं कि भाई आपको इतनी सुंदरता किसने दी, आप इतने खुश कैसे रहते हो, अपनी खुशी का राज तो बताओ। हमारे पास सब कुछ है, हम फिर भी खुश नहीं रहते। तो ये प्यारे बाबा के दिए हुए अमूल्य गहने, अमूल्य गुण, और इन गुणों को धारण करते 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 एक दिन हम सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे, और फिर हमारा टाइटल होगा 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात हम सर्वगुण संपन्न भी होंगे, 16 कला संपूर्ण भी होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भी होंगे। ये सतयुग में हमें टाइटल मिलेगा, लेकिन अभी हमारी रेस है, हम गुणों को धारण करें। गुणों को धारण करने में रेस करनी है, रीस नहीं करनी है। रीस का मतलब है कि किसी के अवगुण को देख करके हमने उसको फॉलो किया, ये हो गई रीस। और किसी के गुण को देख करके हमने उससे भी अधिक गुणवान बनने की कोशिश की, ये हो गई रेस। जैसे मान लीजिए हम सड़क पे जा रही हूं और सामने से कोई स्कूटर वाला आ रहा हो और वो स्कूटर को टेढ़ा बांका चला रहा हो ऐसे सांप की तरह से, तो हम क्या करते हैं? तमाम रीस नहीं करते। रीस का मतलब है कि अगर तुम टेढ़े चलोगे तो मैं भी टेढ़ा चलूंगा, क्या मुझे टेढ़ा नहीं चलना आता? इसका नाम है रीस। और अगर वहां कोई रीस करे कि तुम सांप की तरह चलोगे तो मैं भी सांप की तरह चलूंगा, तो क्या होगा? सबको मालूम है। तो वहां कोई रीस नहीं करता, वहां व्यक्ति क्या सोचता है कि जाने दो ये तो पागल लगता है, और मैं बेशक सड़क से नीचे उतरना पड़े, घास में उतरना पड़े, लेकिन जब ये निकल जाएगा ना तब निकल जाऊंगा, थोड़ा मैं रुक जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, कोई बात नहीं है, पर जीवन बड़ा अमूल्य। अब ये भी जीवन यात्रा है, संगम युग की यात्रा है। अब इस संगम युग की यात्रा में मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, वो टेढ़ा है, उसकी जबान टेढ़ी है, दृष्टि टेढ़ी है, कर्म टेढ़े हैं, व्यवहार ऐसा वैसा करता है, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? क्या उसकी रीस करनी चाहिए कि ये कड़वा बोलेगा तो मैं भी कड़वा बोलूंगा, ये धोखा देगा तो मैं भी धोखा दूंगा, इसने मेरी गलानी की तो मैं भी इसकी गलानी करूंगा, इसने मेरी बात उड़ाई तो मैं भी इसकी उड़ाऊंगा, तो जीवन यात्रा में टक्कर हो जाएगी धोखे। तो वहां जैसे हम रास्ते से हट गए, यहां क्या करना चाहिए? लेट गो। और आज तो मैंने पढ़ा कि किसी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि उससे अधिक गुणवान और उससे अधिक महान बन करके दिखाओ। और भी बहुत अच्छी बात कही कि बदला लेने का केवल एक ही अर्थ नहीं है कि भाई उसने बुरा किया तो मैं बुरा करूं। आप ये सोचो कि भगवान परम धाम छोड़ करके और इतने वर्षों से हमको हम पर उपकार कर रहा है, तो इसके बदले में हम उसे क्या दें? आप इस बदले के बारे में सोचो, ना कि किसी मनुष्य ने आपका बुरा किया तो उस पाई पैसे के बदले में आप अपनी बुद्धि लगा करके और अपने संकल्पों को बिगाड़ो। आप इस बदले का बार बार चिंतन करो कि भगवान को हम क्या रिटर्न दे, भगवान को हम क्या रिटर्न दे, उसने हम पर इतना परोपकार किया, ये है असली बदला। तो जीवन यात्रा में रीस करनी है, रेस नहीं, रेस करनी है, रीस नहीं। बुराई की बराबरी नहीं करनी, अच्छाई की बराबरी करनी है, अच्छाई में भी उससे अधिक अच्छा बनने की रेस करनी है। दूसरा, जैसे हम वॉलीबॉल का खेल खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं या छोटे बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो खेल कब तक चलता है? जब तक दोनों तरफ से गेंद का आदान प्रदान होता है। उधर से गेंद आई, फिर हमने फेंकी, उसने फेंकी, फिर हमने फेंकी, खेल चलेगा, चलता ही रहेगा जब तक कि कोई एक बंद ना करे। तो ऐसे ही मान लीजिए सामने से कोई कटु वचन आया, कटु दृष्टि आई, कटु व्यवहार आया और हमने भी वापस फेंका, तो खेल चलता रहेगा। उधर से आएगा हम देंगे, उधर से आएगा हम देंगे। लेकिन मान लीजिए उधर से आया और हमने बॉल को पकड़ लिया, तो क्या होगा? खेल बंद। वो बेचारा थोड़ी देर तो इंतजार करेगा, बॉल आया नहीं मैं फेंकूं, बॉल आया नहीं मैं फेंकूं, और फिर जब देखेगा कि बॉल सामने से आ ही नहीं रहा है तो उसके बाद खेल खत्म, वो भी थक के बैठ जाएगा, चला जाएगा। तो अगर हमें किसी भी चीज को खत्म करना है तो रिस्पॉन्स देना बंद कर दें, प्रतिक्रिया करना बंद कर दें। हमारी प्रतिक्रिया है जो उस बात को बढ़ा रही है। उधर से कोई बात आती है और हमारे मन में प्रतिक्रिया चालू हो जाती है, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए किया, क्यों किया, इतना थोड़े करना था, मैंने थोड़े कभी किया था, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। ये जो हमारी प्रतिक्रिया के वाइब्रेशन उधर जाते हैं ना, तो वो उसको मोटिवेट करते हैं कि ये व्यक्ति खेलने को तैयार है, तुम खेलो, और हमने फुल स्टॉप लगा दिया। उसने कुछ भी किया फुल स्टॉप, उसने कुछ भी किया फुल स्टॉप, तो उसके बाद खेल खत्म। वैसे भी कहते हैं कि हम यहाँ क्रिया करने आए हैं, प्रतिक्रिया करने नहीं आए, हम यहाँ एक्ट करने आए हैं, रिएक्ट करने नहीं आए। तो ड्रामा में तो एक्टिंग होती है, रिएक्टिंग थोड़े होती है। कई किसी ड्रामा में रिएक्टिंग होती है, जो रिएक्शन होती है वो तो बहुत खतरनाक होती है। जैसे आप कहीं तेजाब डाल दो तो रिएक्शन हो जाती है, कहीं ऐसा कोई केमिकल डाल दो, एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिला दो, रिएक्शन हो जाती है, जहर बन जाता है। तो जो रिएक्शन है वो तो बहुत खतरनाक होती है। तो हम यहाँ एक्शन करने आई हैं, रिएक्शन करने नहीं आई। किसी भी घटना को देखो साक्षी होके और उससे किनारा कर लो और अपने लक्ष्य पर फिर से केंद्रित हो जाओ। इसलिए कोई भी बात आए लेकिन अपने दिव्य गुण को नहीं छोड़ना, सद्गुण को नहीं छोड़ना, अपनी शुभ भावना को नहीं छोड़ना। अगर कोई व्यक्ति, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर कोई व्यक्ति आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कमजोर हैं और वो ताकतवर है, वो आप पे अपनी ताकत आजमा रहा था और वो सफल हो गया, आपको क्रोध आ गया। एक संत, महाराष्ट्र के एक संत की बात सुनाते हैं। एक नाथ होंगे, हाँ। तो एक बार एक गरीब आदमी था, उसको अपनी किसी आवश्यकता के लिए 500 रुपए की जरूरत थी। तो वो एकनाथ जहाँ रहता था उस गांव के जो मुख्य लोग थे उनके पास गया कि मुझे 500 रुपए दे दो। तो उसने कहा हम तुमको 500 रुपए दे देंगे पर तुम हमारा एक काम कर दो। बोला क्या? बोला तुम एकनाथ के घर जाकर के ना कुछ ऐसा करो जिससे उसको गुस्सा आए, उसको गुस्सा दिलवा दो। तो उस आदमी ने कहा देखो मुझे 500 रुपए दे दोगे ना? बोला पक्का रहा, हम बाहर बैठते ही हैं और ऐसा करना कि वो गुस्से में बाहर निकले और हम उसे गुस्सा करता देखें। तो इस आदमी ने बहुत सोचा क्या करूं क्या करूं। फिर इसके मन में एक युक्ति आई, ये उसके घर गया और जाके कहता है एकनाथ महाराज मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। तो एकनाथ भगवान का बहुत भगत था और जो घर में अतिथि आए उसकी भी बहुत समझो उसका मान सम्मान करता था। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि 2 थाली भोजन की लगा दो, एक मेरी और ये एक भूखा अतिथि आया है इसकी, दोनों थाली लग गई और वो ऐसे भोजन परोसने लगी झुक करके। तो ये जो आदमी था इसको तो गुस्सा दिलाना था, एकनाथ को 500 रुपए लेने थे, तो ये उस पत्नी की पीठ पे बैठ गए पीछे से, वो झुकी भोजन देने। तो एकनाथ अपनी पत्नी को कहता है, उसका क्या नाम था, गिरिजा था शायद, गिरिजा जैसे तुम अपने बच्चे को पीठ पे संभालती हो ना, इसको पीठ पे अच्छे से संभालना, देखना कहीं ये बच्चा गिर ना जाए। तो गिरिजा भी कुछ नहीं बोली, एकनाथ जी भी कुछ नहीं बोले, तो उस आदमी को बड़ी शर्म आई, इसको तो गुस्सा तो आया ही नहीं, शर्मिंदा हो गया और उसके पांव में गिर गया, बोला मुझे माफ कर दो, मैं तो ना 500 रुपए के लिए ये सब काम कर रहा था। तो उसने सारी कहानी सुनाई कि वो घर से दूर बैठे हैं, उन्होंने मुझे सिखा के भेजा है कि हम तुमको 500 रुपए दे देंगे, लेकिन तुम एकनाथ जी को गुस्सा दिलाओ, और मैंने तो गुस्सा दिलाने की यही युक्ति ठीक समझी, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। तो एकनाथ जी का आगे देखिए, कहता अच्छा तुमको 500 रुपए चाहिए ना, तो चलो ऐसा करता हूं उनके सामने मैं एक बार तुमको डांट दूंगा। यहां तो गुस्सा नहीं आया असल में तो, लेकिन इस बेचारे गरीब की इतनी मेहनत पानी में ना चली जाए। कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय तो माखन की तरह से पिघलने वाला होता है। असल में तो गुस्सा नहीं आया, लेकिन एकनाथ जी कहते हैं मैं गुस्से की एक्टिंग करूंगा ताकि तेरे 500 रुपए मारे ना जाएं। तो जब वो लोग सामने दिखाई दिए तो वहां उसको कहता है अरे तूने ऐसा किया वैसा किया, गुस्से की एक्टिंग करी, और फिर बोला जा अब उनसे 500 रुपए ले ले। तो उस आदमी ने फिर उनको जाके सुनाया, बोला अरे ये आदमी तो अच्छाई की पराकाष्ठा को भी पार कर गया, मैं इतना बुरा और फिर भी इसने मेरे को 500 रुपए दिलवाने के लिए झूठी गुस्से की एक्टिंग करी, तुम तो इसके आगे कुछ भी नहीं, तुम ऐसे आदमी की बुराई कराना चाहते हो। फिर तो उस आदमी ने भी समझ लिया कि भाई एकनाथ के ये विरोधी हैं और उसके साथ दुश्मनी करने आई। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सच्चे संत हो, ये संत तो कोई कोई कहीं कहीं हुआ, लेकिन संगम युग के असली सच्चे संत तो हम हैं। हमारे ऊपर भी बहुत बातें आती हैं, लेकिन बातें कितनी भी आएं, अगर समर्थ बाप का साथ है और अगर हमने अपने दिव्य गुणों को पकड़ के रखा हुआ है, जैसे कोई लोग बात को पकड़ के रख लेते हैं, कहते हैं क्या करूं बात ऐसी अंदर घर कर गई निकलती नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे बात को मत पकड़ो, दिव्य गुण को पकड़ के रखो, ऐसा गुण अंदर घर कर गया कि कैसी भी बात आ जाए लेकिन मेरा वो दिव्य गुण मेरे से छूटता नहीं। बातों को मत पकड़ो, बाप की शिक्षाओं को पकड़ो, बाप के दिए हुए गुणों को पकड़ो, तो वो गुण सदा बहार हो जाएंगे, हर परिस्थिति में उन गुणों की खुशबू हम फैलाते रहेंगे। और शांत
भगवान।